ఆత్మజ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాతన్యత్కరోతి కిం పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహారిణ అజ్ఞానతిమిరాంధానాం జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుణ్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. న్యూనజిణం వీరం అనంతవరణానసంసనసావం వోచ్ఛామి నియమసారం కేవలీ సుద కేవలీ వణిదం.
यह प्रवचन रत्न चिंतामणि नाम का जो शास्त्र है उसका पृष्ठ क्रमांक 65 पर हम आए हैं. वह 65 पर हमारी गाथा नंबर 40 चल रही है. यहां पर यह बात चल रही है कि जीव में स्थितिबंध स्थान नहीं है, प्रकृति स्थान नहीं है, प्रदेश स्थान नहीं है, अनुभाग स्थान नहीं है और उदय स्थान नहीं है. ये सारी जो बातें हमने कल देखी थी कि ये कर्मों में ये सारी बातें आती हैं. कर्मों में उसकी स्थिति कितनी है, उसके स्थितिबंध स्थान कितने हैं वगैरह वगैरह जो बात थी हमने, प्रकृति स्थान, प्रदेश स्थान और उसके अनुभाग की बात अभी हम कल देख रहे थे. तो यहां क्या कह रहे, देखो अभी हम ये जो सदा निरूपग्रह ये है ना, उसमें नीचे से चौथी लाइन यहां लिखा है कि शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय सुख दुख रूप फल देवानी शक्ति वाड़ो ते अनुभाग बंद छे. यानी जब यह जीव शुभ या अशुभ कर्म को बांधता है और उस वक्त उस समय में जो सुख या दुख रूप फल देने की जो उसकी शक्ति है, ताकत है, वो जितने प्रमाण में बांधता है, ऐसा जो अनुभाग बंद होता है तो ऐसे अनुभाग के स्थान क्या लिखा, आना स्थानों ना पन अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व ने विषय नथी. यानी ऐसे अनुभाग बंद स्थान आत्मा में नहीं है. हरीश भाई ये बात जरा आपको कठिन लगेगी क्योंकि आपको कर्म की बात मालूम नहीं है. कल आए थे ना आप? हाँ, तो कल चार बातें बताई. जब बंद होता है, हाँ, जब बंद होता है तो चार बातें होती है, प्रकृति बंद होता है, प्रदेश बंद होता है, स्थिति बंद होता है और अनुभाग बंद होता है. अनुभाग बंद का अर्थ ऐसा है कि जब हम कर्म बांधते हैं तो कितने प्रमाण में हमें फल देगा उससे भी समय निश्चित होता है. और ऐसे जो फल बांधने के जो स्थान है यानी प्रकार है, वेरिएशंस हैं, वो अनेक हैं. तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे जो अनुभाग बंद स्थान जो है, वो जो निरंजन ऐसा जो परम तत्व अपना आत्मा है उसमें वे नहीं है. वैसे अभी पहले तो बताया था, तो कल आपने पढ़ा था कि प्रकृति बंद स्थान नहीं है, स्थिति बंद स्थान नहीं है, प्रदेश बंद स्थान नहीं है. अब इतना होने के बाद आगे बताएंगे उदय स्थान भी नहीं है. क्या कहा देखो, शुभाशुभ कर्मनी निर्जराना समय. निर्जरा यानी यहां उदय लेना. सुख दुख रूप फल देवानी शक्ति वाड़ो ते अनुभाग बंद छे. एवा अनुभाग बंदना आनान स्थानों ना पन, अनुभाग बंदना स्थानों पन निरंजन निज परमात्मा तत्व विषय नथी. एनो अवकाश नथी एटले देर इज नो चांस કે ભાઈ આવા કંઈ એની અંદર હોઈ શકે એમ. વળી દ્રવ્ય કર્મ તથા ભાવ કર્મના ઉદયના સ્થાનોનો પણ અવકાશ નિરંજન નિજ પરમાત્મ તત્વને વિશે નથી. એ દ્રવ્ય કર્મ યાને ક્યા હરીશભાઈ આપ જાણતે, દ્રવ્ય કર્મ યાને ક્યા? હા ક્યા બોલો ભાઈ, અટક ગયો છે. द्रव्य कर्म मालूम नहीं आपको, कोई बात नहीं, उसका स्टॉक बहुत है अपने पास, अपने पास यानी आपके पास नहीं, हमारे पास भी है, सबके पास है, अपने पास मतलब सबके पास। तो द्रव्य कर्म यानी बहुत अच्छा, देरी से आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया। और भाव कर्म यानी क्या दिव्याबेन? मोह राग द्वेष, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते सब समझ जाएगा। उनको कोई भी आप शिखामण मत देना, वो बहुत एबल आदमी है। क्या कह रहे हैं देखो, यहां दो बातें बताएं, वळी यानी और, द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म न उदय। तो ये द्रव्य कर्म का उदय पुद्गल में होगा और भाव कर्म का उदय जीव में होगा, लेकिन वह जीव का जो भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष के जो परिणाम है उसको यहां भाव कर्म कहते हैं। तो भाव आप जरा इधर बैठो थोड़ा सा, हाँ बस, ताकि भाई साहब को बराबर दिखे। हाँ ठीक है ठीक है, सब अच्छे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं, ये भाव कर्म जो है ना, यानी राग करना द्वेष करना मोह करना, ये जीव का स्वभाव भाव होगा क्या विभाव भाव होगा? विभाव भाव होगा। हाँ, तो ऐसा विभाव भाव निरंजन, कहा ना निरंजन का अर्थ क्या, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, पवित्र पवित्र ऐसा जो त्रिकाल जो स्वभाव है उसमें विभाव रूप कीचड़ नहीं होगा। पवित्र है ना, अपना शर्ट एकदम सफेद है, उसमें कीचड़ लग जावे तो गंदा हो गया। तो ऐसा यह मोह राग द्वेष रूपी जो विभाव परिणाम है वह त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। इसलिए क्या कहा उधर, केवली द्रव्य कर्म तथा भाव कर्मना उदयना स्थानों पर अवकाश नती, एटले उसमें यह उदय स्थान नहीं है। ये उदय स्थानों में दो बातें ली है, एक द्रव्य कर्म यानी पुद्गल की, और भाव कर्म यानी जीव के विभाव भावों की भी बात उसमें नहीं है। यहां तो शुद्ध आत्मा की बात चल रही है ना, शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है ना, तो उसमें तो किसी भी प्रकार की पर्याय नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं। यानी विकारी पर्याय तो है ही नहीं, अविकारी पर्याय भी नहीं है, मोक्ष रूपी पर्याय भी त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो मोह राग द्वेष तो पर्याय रही ना, वह तो विकारी पर्याय है, तो वो तो त्रिकाली स्वभाव में शुद्ध आत्मा में न्यायिक भाव में ध्रुव स्वभाव में है नहीं। ख्याल में देखो, थोड़ा सा हम पहले पीछे का रेफरेंस लेते हैं तो यहां जो बात बताई है वो बहुत आसानी से हमारे ख्याल में आती है। क्या कहा देखो, एवी रीते आचार्य देव एटले श्रीमद अमृतचंद्र सूर्य श्री समय सारणी आत्मख्याति नामनी टीका मां 11वां श्लोक द्वारा कहूं छे के ये 11 नंबर का श्लोक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12 नंबर का श्लोक, ये 11 नंबर का श्लोक और भी ये बाकी 56 और 57 दो श्लोक वो बाद में पढ़ेंगे। अभी पृष्ठ क्रमांक 67 देखो, गाथा 40 उपरनु प्रवचन गोमठ सारमा आ बधानी कर्मना प्रकृति प्रदेश स्थिति अने अनुभाग बंधनी वात आवे छे ने, तो ते आत्मामा नथी पन ए तो जड़मा छे एम कहे छे। तो जड़मा छे यानी किधर है तेजु? हाँ, पुद्गल मा कर्म जे छे ते पुद्गल छे। तो शू कहे छे कि ये जो कर्मना प्रकृति छे प्रदेश छे स्थिति छे अनुभाग वगैरह जे वात आवे छे ते कर्ममा छे जड़मा छे, केम के जड़ कर्म पण पुद्गल स्वरूप पुद्गल छे। अहीं आ गाथामा प्रकृति बंध 8 कर्म छे तेनी प्रकृति एटले तेनो स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या लेना, कि जो कर्मों का जुदा जुदा स्वभाव है। अभी ज्ञानावरण जो कर्म है उस ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव कैसा है, कि ज्ञान के ऊपर आवरण डालना। यानी जैसा हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कोई एक पुतला है और पुतले के ऊपर कोई कपड़ा डाल के रखा है, तो उसमें क्या होगा कि जितने उसकी ऊंचाई 5 फुट का पुतला है और 4 फुट तक पर्दा है उसके ऊपर, आवरण है, तो अपने को पुतला कितना दिख रहा है, 1 फुट वाला, तो ये आवरण कितना है, अधिक है, तो ये ज्ञानावरण कर्म का कार्य क्या है कि जीव के ज्ञान जो है उसके उगाड़ जो है ज्ञान पर्याय में उसके ऊपर आवरण डालना, उसका स्वभाव क्या है, ज्ञान के ऊपर आवरण डालना। वैसे दर्शनावरणी कर्म का भी क्या स्वभाव है कि दर्शन गुण जो है सामान्य अवलोकन वाला दर्शन गुण, सुबह बात आई थी ना, दर्शन गुण सम्यक दर्शन नहीं, ये दर्शन गुण, तो वो दर्शन गुण के ऊपर आवरण डालना उसको कहते हैं दर्शनावरणीय कर्म। ऐसे प्रत्येक कर्म का जुदा जुदा स्वभाव है, तो उसकी प्रकृति जुदी जुदी है। प्रकृति यानी स्वभाव, ख्याल में आए बात, नहीं आवे तो पूछना। क्या कहा, देखो 8 कर्म छे तेनी प्रकृति एटले तेनो स्वभाव, ए शू छे ए प्रकृति कहे, स्थिति बंध एटले मुदत, कि कितने टाइम के लिए कितने पीरियड के लिए ये कर्म बंधा हुआ है, तो वो मुदत। अनुभाग बंध एटले रस, रस याने जो कोई फल मिलेगा हमको, फलदान शक्ति जो है उसको रस कहते हैं। और क्या रहा, अने प्रदेश बंदना स्थानों नो तथा उदयना स्थानों नो समूह जीव ने नथी एम कहूं छे। ये प्रदेश बंद यानी क्या, देखा था हमने कि कितने परमाणु एक साथ बंधे जाते हैं, तो एक एक प्रदेश यानी एक एक परमाणु, एक परमाणु एक प्रदेश को ही रोकता है, तो ये कितने परमाणु है ये बताने के लिए प्रदेश की भाषा में बताते हैं प्रदेश बंद, यानी हम अंग्रेजी में कहते हैं कि नंबर ऑफ परमाणु, परमाणुओं की संख्या कितनी है वो प्रदेश बंद बताता है। तो ये कहते हैं भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु छे अने तेमा कर्मना प्रकृति स्थिति अनुभाग अने प्रदेश बंदना स्थानो नथी, केम के कर्मज जीवमा नथी। क्या उत्तर दिया, कर्मज जीवमा नथी। क्यों ऐसा क्यों भाई साहब, सुभाष चंद्र जी बोलो। हाँ और हाँ हाँ बहुत अच्छा, हाँ और क्या है, और 2-3 तो कम से कम आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। एक प्रूफ तो आपने सही दिया कि जीव चेतन पदार्थ है और कर्म उद्गल है अचेतन है जड़ है। हाँ यहां करने की कहां बात है, क्यों नहीं, हाँ वो आ गई बात, जड़ और चेतन में रूपी और अरूपी आ गई बात। हाँ भाई साहब आपको हम पूछे तो आपको आपका बड़ो जवाबदारी है। हाँ कोई बात, अच्छा है, आपने प्रयत्न बहुत अच्छा किया। और कौन बतावे, पिनांग भाई बताएंगे आप, क्या बताया जोर से, क्या बताया, स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न है, नक्की हो गई बात, और क्या है, और एक का दोनों में अत्यंत अभाव, जीव की पुद्गल में नास्ती है और जीव की जीव में अस्ति है। बहुत इतने हम सिद्धांत सीख चुके हैं ना, कोई बात नहीं, ऐसा फिर दोबारा उसको थोड़ा सा ब्रशिंग करेंगे। देखो हम यहां पढ़ते किस लिए हैं कि वो बराबर अपने को समझ में आता है कि नहीं, तो उसको सिद्धांत पर घटाएंगे। खाली इन्होंने लिखा हमने पढ़ा, ओहो आज हमने बहुत बहुत सद्देक है, बहुत सद्देक है, कुछ नहीं, 2 लाइन खाली सीखो, लेकिन ऐसी सीखो कि दोबारा वो सिखाने की गरज नहीं पड़े। तो मैं प्रश्न पूछता हूं तो नाराज नहीं होना, और नाराज हो गए तो घर में जाके झगड़ा करना, इधर नहीं। हाँ क्या हो गया, देखो क्या कहते हैं, माटे भगवान आत्मा मां, तो ये भगवान क्यों लिखा साहब? खाली आत्मा मां लिखते तो क्या तकलीफ थी? ख्याल में है ना? तो ये भगवान शब्द इसलिए डाला है, भगवान आत्मा यानी जो त्रिकाली शुद्ध ऐसा जो आत्मा है, ये हमें तो शुद्ध भाव का भाव ये लेना है ना। तो भगवान आत्मा किसको कहेंगे? ये जो त्रिकाली जो ऐसा, तो तुम स्वयं अभी भगवान आत्मा हो क्या? नहीं है ना, क्यों? मैं त्रिकाली शुद्ध हूं, पर्याय में अभी अशुद्धता है, जानता हूं, इसलिए तो ये पढ़ रहा हूं। क्यों? ये पढ़कर अपने में शुद्धि पर्याय में आ जाए, इसके लिए हमारे सारे प्रयत्न है। ख्याल में? अरे अनादि से मैं स्वभाव से तो शुद्ध ही हूं, उसमें कोई हमको गड़बड़ी करनी नहीं है। उसको जरा अरे अशुद्ध हो गया, उसको शुद्ध नहीं, नहीं नहीं। द्रव्य स्वभाव या आत्मा का त्रिकाल जो स्वभाव भाव है वह तो शुद्ध ही है, पर्याय में जो अशुद्धता है वो कैसे जावे, इसके लिए हम सारा ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो आचार्य कहते तेरा जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसा पहले जान, फिर मान, और उसी में एकाग्र हो जा, बस तेरा कल्याण हो जाए। कल्याण यानी क्या? तुझे अनंत सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष दशा प्राप्त होगी, यानी सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, अन्य कोई मार्ग है नहीं। कल बात हुई ना, वो क्या है, क्या तरण काल में हो परमार्थनो पंत, तरण एक हो तरण काल में परमार्थनो पंत, जो परमार्थनो पंत एक हो, ऐसा ही आता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्या कहा देखो, माटे भगवान आत्मा मां ए जड़, जड़ यानी कर्म जो है ना, छेज नथी, अत्यंत अभाव छे बनने में। हवे विशेष बात ले छे के तो ए जड़ तो आत्मा मां नथी, परंतु तेना निमित्ते जे विकारना उदयना भंग पड़े छे, भंग यानी भेद, अलग अलग उसके प्रकार जो होते हैं, उदयना भंग पड़े छे, ते तो आत्मा ना छे ने भाई, ए उदयना स्थानों नो समूह जीव ने नथी। पहला जड़नी बात लीधी के जड़ अर्थात कर्मना प्रकृति प्रदेश स्थिति अने अनुभाग बंध जीवमा नथी। हवे कहे छे के जड़ना निमित्ते अंदर मा थतो उदय भाव पण जीवमा नथी। देखो पहले में पहले तो क्या बात कही कि यह जो शुभाशुभ भाव जो हो रहे हैं वो तो ये आत्मा में ही हो रही, ये तो पहला नक्की कर, वो मेरे में है ही नहीं, ऐसा उड़ा मत देना। ख्याल में? देखो क्या कहा कि हवे कहे छे कि जड़ना निमित्ते, तो वो जड़ तो निमित्त है, लेकिन जो कार्य हो रहा है वो किसने किया? वो तो मैंने स्वयं ने किया। तो अंदर मा थतो उदय भाव, एटले भाव कर्म की बात आई है। ए पन जीव मा नथी, चिदानंद न्यायक भाव एवा प्रभु आत्मा मा, ए उदय भावना स्थानों क्यांथी आव्या? ख्याल में नहीं? देखो क्या कह रहे हैं, पहले क्या हुआ, यहां हम थोड़ी अलग भाषा में समझते हैं कि यहां राग द्वेष के परिणाम हुए, तो राग द्वेष के परिणाम जो है वह कौन से द्रव्य के कौन से गुण की कौन सी पर्याय है? हाँ बोलो, आप ही बोलो। जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, तो पैदा कहां हुई? जीव द्रव्य में। तो अभी क्या समझा रहे हैं, यहां कार्य क्या हुआ कि यहां विभाव भाव हुआ, यानी राग द्वेष के परिणाम हुए, उसमें कोई भी एक लेना, मोह के हुए राग के हुए जो भी है, तो वो जो हुए उसको निमित्त कौन है? तो कर्म का उदय। तो कर्म ने इसको राग द्वेष कराए क्या? वो निमित्त है, और यहां अपने स्वयं के कारण वैसे राग द्वेष मोह के परिणाम हुए। अब ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम 5 मिनट पहले नहीं थे, अभी हुए, अब न मालूम 1 घंटे के बाद निकल जाएंगे, तो वो परमानेंट अपने पास है क्या? नए नए राग द्वेष के परिणाम हो वो बात छोड़ दो, लेकिन वही परिणाम ऐसा त्रिकाल अपने में रहेगा क्या? तो मैं कैसा हूं? त्रिकाल स्वरूप हूं, शुद्ध न्यायक भाव हूं, ध्रुव स्वभाव में हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो इसमें ये राग भाव कहां से आए? स्वभाव में नहीं है, पर्याय में है। तो हमें किसका आश्रय लेना है? पर्याय का, त्रिकाली स्वभाव। इतनी बात ख्याल में, अभी फिर से पढ़ते देखो। हवे कहे छे, नीचे से तीसरी लेना, बीच में है देखना। हवे कहे छे के जड़ना निमित्ते अंदर मां थतो, अंदर में यानी आत्मा मां थतो उदय भाव पण जीव मां नथी। चिदानंद यानी चिद यानी जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ऐसा चित और आनंद, ये मैं कैसा हूं? ज्ञान दर्शन और आनंद में हूं, ऐसा जो न्यायक भाव, ये न्यायक यानी जानना जानना जानना, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो न्यायक भाव, एवा प्रभु आत्मा मा, ये आत्मा कैसा है? तो चिदानंद न्यायक भाव ऐसा वो जो आत्मा मा है, एवा आत्मा मा ये उदय भावना। तो यहां कौन सी बात हो गई? उदय भाव में दोनों को लेना, वो जड़ कर्म वाला और भाव कर्म वाला। स्थानो क्या थी आव्या, और सिर्फ भाव कर्म को लेना है तो उसको भी आप ले सकते हैं। पन अहिया बे वात लीधी छे, कर्मना प्रकृति स्थिति अनुभाग अने प्रदेश बंद तथा उदस उदय स्थानो एम बे वात लीधी छे। हवे जड़ कर्मना प्रकृति आदि तो आत्मा मनती, ये बात तो ठीक, पण जड़ना निमित्तना संबंध में जे विकार थाय छे ते तो आत्मा में छे ने? तो कहे छे ना। अरे अभी तो कह रहे थे हाँ, और अभी क्या कह रहे हैं? ना। पण आगळ सांभळो, ए विकार पण वस्तु में नहीं, वस्तु में नहीं एटले त्रिकाली स्वभाव में नहीं, द्रव्य में नहीं। केम के ते विकार एक समय ना पर्याय में छे अने पर्याय वस्तु में नहीं। अब यहां केवल शुद्ध भाव अधिकार में, शुद्ध ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव है उसके बारे में जब हम चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में जब हम समझ रहे हैं, तो वह पर्याय रहित ही है। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो जो विषय है उसमें पर्याय नहीं है। पर्याय है, ये उज्ज्वला का हमेश का दृष्टांत के हाथ में कंगन है, बंगड़ी क्या बोलते आप लोग, वो पाटला है, पाटली है, जो भी है, तो वो जो हम देखते हैं तो अरे उसका घाट बहुत अच्छा है, अरे उसका वजन भी बहुत अच्छा है, ये डिजाइन तो एकदम बढ़िया है। तो जब आप डिजाइन को देख रहे, वजन को देख रहे, तो वहां सोना है क्या? नहीं। तो फिर एक दिन पैसे की जरूरत पड़ी उज्ज्वला को, तो गई सोनार के पास, शराब के पास, सोनार में बोले इसको बेचना है, देखो कितनी बढ़िया डिजाइन है, ऐसी डिजाइन तो आपको देखने को नहीं मिली। बोले रहने दे, पहला सोने का कितना सोना क्या है वो देखने दे, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, 5 कैरेट है। तो उसकी नजर किधर है? सोने के ऊपर। तो वहां वो डिजाइन वजन बगीजन है क्या? नहीं, सारा कुछ बाकी जो हमने देखा था उसका। तो उस समय वो पर्याय भी उसकी नजर नहीं, उसकी नजर तो द्रव्य पर है, सोना कितना परसेंट है। वैसे यहां कह रहे हैं, हम जब शुद्ध भाव को जब देखते हैं तब वो पर्याय उसमें शामिल नहीं करना, तो पर्याय को कहां छोड़ना? रहने दे उधर, उसके तरफ मत देख। जैसे कि अभी क्या हो गया, आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है और उसमें आपने हमको बुलाया और हम आए, साहब पंडित जी आओ आओ आओ, ऐसे अभी आओ आओ बोलते इतने में उस तुम्हारी नजर बाहर गई, तो वहां कौन दिखा? अमिताभ बच्चन। तो आप पंडित को देखेंगे तो उसको तो है ना वो उधर, उसको गौन किया और वो अमिताभ बच्चन के पीछे दौड़े, ख्याल में आए? वैसे यहां पर्याय तो है, पर्याय को कहीं उठा के रस्ते में नहीं फेंकना है, भाई उस फिर से अपना नजर हटा के उसमें से अपना उपयोग निकालकर त्रिकाली स्वभाव में लेना है। अब ये त्रिकाली स्वभाव की जब बात चल रही है तो कहते उसमें पर्याय है ही नहीं, ख्याल में आया? तो यहां वो कह रहे, देखो अभी अपन थर्ड लाइन पन जड़ना निमित्तना संबंध में जे विकार थाय छे ते तो आत्मा में छे ने, तो कहे छे के ना ए विकार पन वस्तु में नथी। अभी एक अपेक्षा समझ में आई ना? हाँ निंसी भाई कुछ ख्याल में आती है बात? नहीं आवे तो पूछना भाई, ऐसा कोई मुंजवन मत रखना। केम के विकार एक समय ना पर्याय में छे अने पर्याय वस्तु में नथी एटले त्रिकाड़ी स्वभाव में नथी। हा हा आ प्रकृति स्थिति आदि तो आत्माना एक समयना पर्याय में पण नथी, कारण के ए तो पर छे, पर छे एटले परद्रव्य छे, परंतु तेना संबंध में अर्थात ते बन्नेनो जीवने कर्मनो निमित्त नैमित्तिक संबंध थता जे विकार उत्पन्न थाय छे। विकार ने शू कहवाय छे? शुभाशुभ भावना उदय ना ते जे प्रकारो छे। अभी विकार एक शब्द में कहा और उसके दो शब्द बनाने, तो क्या बताया? शुभ और अशुभ भाव। शुभ भाव को विकार कहा, नाराज नहीं होना। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि विकार उत्पन्न थाय छे एटले शुभाशुभ भावना उदयना जे प्रकारो छे ते एक समयना पर्यायना अस्तित्वमां छे तो पण त्रिकाळी वस्तुमां नथी। आहा भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु छे। पंडित बनारसी दासना समयसार नाटकमां एम आवे छे ने के चेतन रूप अनूप अमूर्त सिद्ध समान सदापद मेरो मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म घेरो। क्या कहते हैं? अभी आगे है क्या? ये पहले दो लाइन समझ लेते हैं। देखो मैं कैसा हूं, मैं चेतन रूप हूं, चेतन रूप यानी ज्ञान दर्शन में हूं, अनूप हूं यानी मुझे किसी बात से आप तुलना करने जाओ, उपमा देने जाओ तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो अनुपम हूं, अनूप जिसकी उपमा नहीं दे सके। जैसा हम कहते हैं ना, कोई स्त्री को देख के कहता है इसका मुख चंद्रमा जैसा है, तो उसने क्या बताया? चंद्रमा जैसा उसका चेहरा है, उपमा दी। वैसा वो तो ऐसा पहलवान था कि उसके 10 हाथी का बल था, तो उसकी तुलना हो गई, उपमा हो गई हाथी के साथ। लेकिन ये आत्मा कैसा है? चेतन स्वरूप जो है वो अनूप है। और कैसा है? तो कहते अमूर्त। अमूर्त यानि अमूर्तिक अरूपी। ऐसा क्या है? सिद्ध समान सदापद मेरो, तो मैं भी ऐसा ही चेतन स्वरूप अनूप अमूर्त और सिद्धों जैसा हूं, सिद्ध समान मेरा स्वभाव है। स्वभाव की बात चल रही है। अब क्या हो गया? हाँ ये बात है। पूछो पूछो पूछो। ये पूछ रहे हैं कि सिद्ध समान कब है? तो अभी सदा यानी त्रिकाल। मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म घेरो। तो मैंने जो महाअंधकार में ऐसा जो मोह है उसको अपनाया और प्रसंग किया, इसलिए अंधेरे ने मुझे घेरा यानी मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में मैं गिर गया। आगे यहां लिखा है परना संगे में पोते मोह उत्पन्न करियो छे। अब कहते हैं ज्ञान कला उपजी अब मोही कहो गुण नाटक आगम के रो जसु प्रसाद सद जासु प्रसाद सदय शिव मार्ग वेगी मिटे भव वास बसेरो। क्या कहते हैं कि ज्ञान कला उपजी यानी ज्ञान कला, यानी अभी मुझे सम्यक ज्ञान हुआ। क्या हो गया? ज्ञान कला उपजी, अब मोही मुझे सम्यक ज्ञान कला जागृत हुई, यानी मिल गई। हाँ, मुझे ज्ञान, वेद ज्ञान मुझे हुआ। कहो गुण नाटक आगम केरो, यानी मैं अभी यह नाटक समय सार लिख रहा हूँ। देखो, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ये बनारसी हो भी सकता है कि आपको मालूम है, लेकिन मेरे को विकल्प आया तो बता ही देता हूँ। ये जो पंडित बनारसी दास जी थे, के साथ श्वेतांबर पंथ उन्होंने, लेकिन बहुत ऐसा हो गया कि उनमें परिवर्तन ऐसा हो गया, उन्होंने समयसार पढ़ा तो समयसार पढ़कर एकदम निश्चयाभासी हुए। वो ऐसे रूम में दो तीन मित्र थे, ऐसे नंगे नंगे रहते थे कि दो घंटे के लिए हम मुनि हुए ऐसा मानते थे। लेकिन फिर भी उनको, इनका पुण्य का उदय ऐसा रहा कि उनको कोई सही निमित्त मिल गया और उन्होंने जैन दर्शन का अभ्यास किया, और इतना उनका इतना बढ़िया अभ्यास हुआ कि वो स्वयं सम्यक दृष्टि हुए। यहां लिखा है ना, ज्ञान कला उपजी अब मोही कहो गुण नाटक, ये मैं नाटक समयसार आगम केरो, यानी नाटक समयसार राजमल जी पांडे ने जो टीका लिखी थी उसके आधार से उन्होंने समयसार नाटक नाम का एक शास्त्र लिखा था। और कहते हैं जासु प्रसाद सधै शिव मार्ग, उसके प्रसाद से यानी उसके बदौलत, उसके मेहरबानी से जो मैंने आगम लिखा, अभी मुझे क्या होगा, शिव मार्ग सधेगा। वेगी मिटे भव वास बसेरो, यानी ये जो भव में रहने का जो काल है, भव वास जो है, वो बहुत रैपिडली मिट जाएगा, वेगी स्पीडिली। ये भव वास में जो अभी मेरा बसेरा है वो थोड़े ही काल में खत्म होने वाला है। देखो कितना कॉन्फिडेंस है ख्याल में है। ये उत्थानिका पद 11, अरे रे तेने आवो मनुष्य भव मळ्यो छे, ते भवना अभाव कर्मा माटे छे। क्या कहते हैं वसंत जी भाई? हाँ, ये इनकी भाषा ऐसी है। क्या लिखा? कितने आपको नहीं, मने ऐसा लेना, आवो मनुष्य भव मळ्यो छे ते भवना अभाव करवा माटे छे, भव वधारवा माटे नथी एम कहे छे, भवनो अभाव करवा माटेनो आ भव छे, पन भवमा रेवा के भवने वधारवा माटे आ भव नथी। શું કહ્યું? અહીં શું કહે છે કે જે કર્મનું નિમિત્તપણું, એટલે નિમિત્તપણે જે કર્મ છે એ કર્મ તો આત્મામાં નથી, પરંતુ કર્મના નિમિત્ત સંબંધે ઉત્પન્ન થયેલા વિકૃત ભાવો પણ, વિકૃત ભાવ એટલે કોને લીધા ભૈયા? હા, શુભાશુભ ભાવ, દોનો કો વિકૃત ભાવ, વિભાવ ભાવ કહા, વિકાર કહા, ક્યા કહા? परंतु कर्मना निमित्त संबंधे उत्पन्न थेला विकृत भावो पण त्रिकाळी वस्तु भगवान आत्मा मा नथी। आवा जेमा विकार नथी एवा भगवान आत्मा नी दृष्टि करवी तेनु नाम सम्यक दर्शन छे। भारे वात भाई, आवी केवो छे आ त्रिकाळी स्वभाव आत्मा? सदा निरुपराग जेनू स्वरूप छे एवा निरंजन, एटले निर्दोष निज परमात्म तत्व ने खरेखर द्रव्य कर्मना जगन्य मध्यम के उत्कृष्ट स्थिति बंदना स्थानो नथी। आगळ एक वार नीचे फूटनोट में निरुपराग नो अर्थ कर्यो छे, विकारी भाव में जे चीज निमित्त छे ते उपाधि छे, यानी जिसके ने ये कर्म है, कर्म के निमित्त से इस जीव को विकारी परिणाम होते हैं, क्या लिखा, थर्ड लाइन, विकारी भाव में जे चीज निमित्त छे ते उपाधि छे, अने तेने अनुरूप जे विकारी भाव औपदिक भाव मलिनता छे ते उपराग छे, और इससे रहित जो है वो निरुपराग है। आ वात ने वधारे विस्तार थी समझवी पड़शे, शुं कहे छे के आत्मानु स्वरूप निरुपराग छे। निरुपराग एटले शुं के उपराग विनानु, तो उपराग एटले शुं के कोई पदार्थ मा अन्य उपाधिनी समीपताना निमित्ते थतो उपाधिने अनुरूप विकारी भाव, यानी जैसा ये कर्म का निमित्त आया और वह जीव उसमें जुड़े नहीं तो उसको उसके निमित्त से कोई राग नहीं होगा। देखो देखो अभी हम देखते हैं, आप तो जानते हो मुनि पारसनाथ जब ध्यान में लीन थे तब तीन बातें हुई एक ही साथ। क्या हुआ, कमठ नाम का जो पूर्व भाव का जिसका नाम था, अभी उसका नाम संवर था, तो संवर कहने से तो किसको याद नहीं आता, इसलिए कमठ। कमठ ने अशुभ भाव किया और उसने उनके ऊपर उपसर किया, तब धर्मेंद्र उनने ऐसा शुभ भाव किया, धर्मेंद्र पद्मावती ने, कि उनको बचाने का राग उनको आया, शुभ राग किया। तो हमारे पे मतलब मुनि पारसनाथ पे ऐसा कोई संकट आया है, पानी बरस रहा है, ओले शोले पत्थर पानी सब बरस रहे हैं, तो उनको ज्ञान हुआ होगा कि नहीं, कर्मों का उदय आया, तीनों के अपने अपने जुदे जुदे परिणाम हुए, और पारसनाथ ने क्या किया, अपने स्वरूप में एकाग्र रहे, बाह्य में जो होता है वो होने दिया, तो उन्होंने कोई राग द्वेष नहीं किया, वो निरूपर राग रहे। और ये दोनों निमित्त से ये देखा ऐसा ऐसा हो रहा है कमट उसके ऊपर, हाँ, तो उनको शुभ राग हुआ तो उसको उपराग कहेंगे, और वो जो कर रहा था वो तो उपराग है कि उसके क्रोध कषाय का जो भी है द्वेष का परिणाम जो हुआ। तो अभी क्या कह रहे, देखो, कोई पदार्थ उपराग एटले शू, कोई पदार्थ मां अन्य उपाधिनी समीपताना निमित्ते, तो अन्य उपाधि यानी कर्मना समीपताना निमित्ते लो थतो उपाधिने अनुरूप, वो जो कोई कर्म का उदय है उसके अनुरूप जो विकारी भाव है उसको उपराग कहते हैं। अभी उन्होंने दूसरा उसके अंदर उदाहरण दिया है, देखते हैं, जेम स्फटिक मां फूलना निमित्ते थती फूलने अनुरूप लाल आदि झाए, जो स्फटिक मणि होता है वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसका स्वभाव कैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है स्फटिक का, लेकिन वो स्फटिक कहीं लाल फूल के साथ रखा जाए तो फूल का शेडो, फूल की शेड उसमें दिखाई देती है, स्फटिक मणि लाल होता है। उसको काले कपड़े पे रखो तो स्फटिक मणि काला दिखे, पीले कपड़े पे रखो पीला दिखे, हरे कपड़े पे रखो हरा दिखे, तो ये सारी उपाधि है। जो क्या कह रहे, जेम स्फटिक मां फूलना निमित्ते थती फूलने अनुरूप लाल आदि झाए, स्फटिक मां लाल आदि, आदि यानी उसमें आप और कलर भी ले लेना, थाई छे ने ते झाए फूलने निमित्त ने अनुरूप विकारी भाव छे, अने ते भाव ने अर्थात ए औपाधिक भाव ने उपराग भाव कहे छे। उन्होंने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया, मैंने पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण दिया, बात तो एक ही है। तेवी रीते निमित्त रूप कर्मनी उदयनी अनुकूलता मां थता, एटले के ए निमित्त रूप कर्म अनुकूल छे तेने अनुरूप जीव मां थता विकार ने उपराग कहे छे। देखो देखो अभी क्या हो गया, यहां क्लास छूट गया, अभी अपना नीचे जाते जाते वहां दो जन कोई भी आप समझ लेना, 100 रुपए की नोट दिखी, आजकल 1000 की आती है ना, 1000 की नोट दिखी, 100 का को उसमें भी क्यों कंजूस है, तो 1000 की नोट देखी तो एक को ऐसा आया मन में
कि अरे ये बाजू वाला नहीं होता तो ये पूरे मेरे 1000 रुपये हो जाते। और दूसरे के मन में आया हा? कि ये 1000 रुपया मैं उठा के कल मंदिर में जाके गुलक में डाल दूंगा, यानी वो दान पेटी में डालूंगा। तो एक ने क्या किया, देखो दोनों कर्म का उदय क्या है, वहां 1000 की नोट और एक के क्या भाव हुए, पाप भाव, और एक के पुण्य भाव, समझ लो समझने के लिए। तो ये दोनों ही उपाधि भाव है, उपराग भाव है। देखो देखो क्या कहते हैं, तेवी रीते निमित्त रूप कर्मना उदय नी अनुकूलता में थता, एटले के ये निमित्त रूप कर्म अनुकूल छे तेने अनुरूप जीव में थता विकार ने, तो विकार ने शुभ भाव कहो या अशुभ भाव कहो, विकार ने उपराग कहे छे। तो ये निमित्त रूप कर्म तो आत्मा मां नथी, परंतु ये निमित्त ने अनुरूप थतो विकार पण आत्मा मां नथी। यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों आ गए ना इसमें, तेवी तेथी एवा उपराग विना नो होवा थी आत्मा निरुपराग छे। जेम स्फटिक मणि पासे लाल पीड़ा फूल होय तो ते फूल निमित्त छे, उपाधि छे, अने फूल ने अनुरूप अंदर मां जे लाल पीड़ो रंग थाय छे ते लाल पीड़ो रंग उपराग छे। पूरा स्फटिक उपराग नहीं है, वो पर्याय, वो जो अवस्था पलटी ना, वो आम होवा छता पण ते स्फटिक मणि तो उपराग विनानो छे। वैसे यहां शुद्ध आत्मा जो है वह भी उपराग याने निरुपराग ही है। कब? सदा। ख्याल में आती बात? क्या कहा देखो, थर्ड लाइन ऊपर से, आम हुआ छता पन ते स्फटिक मणि तो उपराग विनानो छे, तेम भगवान आत्मा ने कर्मनु निमित्तपणु ते उपाधि छे, अर्थात कर्म निमित्त छे ते उपाधि छे, अने ए तो परमा छे। हवे कहे छे के ते कर्म ने अनुरूप जे विकारी भाव थाय छे ते उपराग मलिनता विकार औदयिक भाव छे, अने ते उपराग पण त्रिकाळी द्रव्यमान नथी। ये बात समझ में आई क्या? क्या नहीं समझो तो पूछ लेना भाई। ख्याल में आई डॉक्टर साहब? नो प्रॉब्लम। चलो हाँ, आई त्रण बोल कया, निमित्त एटले उपाधि, निमित्त कहो के उपाधि कहो एक ज छे। जेम के स्फटिक ने लाल पीड़ा फूल उपाधि छे, ते उपाधि ने अनुरूप एटले के ते निमित्त ने अनुरूप अंदर जे लाल पीड़ो रंग थाय तेने उपराग एटले मलिनता कहवाय छे। छता ते उपराग विनानो ए स्फटिक मणि छे, तेम चैतन्य स्फटिक मणि भगवान आत्मा विषय कहे छे। अब यहां मूल बात है, पहले तो उदाहरण दिया, अब यहां अपने आत्मा को, आत्मा पर ये बात घटित करते हैं। क्या कहा? जड़ कर्म ते तो छे ते निमित्त छे, ते उपाधि छे। दूसरा पॉइंट, ते उपाधि रूप निमित्त रूप कर्मना संगे तेना पर्याय मां कर्म ने अनुरूप थतो पुण्य पाप नो शुभ के अशुभ भाव नो विकार ते नैमित्तिक छे, एटले ते उपराग छे, ते मेल छे। देखो यहां और खुलासा किया है कि पुण्य पाप नो एटले शुभ ने अशुभ भाव नो, ये बन्ने ने एक शब्द विकार निमित्त छे, अनुकूल।